आज है 15 दिसंबर दिन मंगलवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय पर मारा छापा।
सक्षम अदालत से वारंट मिलने पर आज दिल्ली व उत्तर प्रदेश के 14 स्थानों पर तलाशी की जा रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी के संबंधित रिपोर्टें कम्प्लीटली आधारहीन हैं।
तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा,
कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है।
आईपीएल के अगले सत्र में महेंद्र सिंह धोनी पुणे के लिए तो सुरेश रैना राजकोट के लिए खेलेंगे। ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई के छापों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर और मनोरोगी कहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस बयान के बाद केंद्र में सत्ताधारी भाजपा और दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के बीच तीखी जबानी जंग शुरू हो गई है। भाजपा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान को शर्मनाक बताते हुए उनसे माफी मांगने के लिए कहा है, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने राज्यसभा में सीबीआई की छापेमारी के मुद्दे पर केजरीवाल के समर्थन में हंगामा किया है। वहीं सीबीआई ने स्पष्टीकरण दिया है कि छापेमारी की कार्रवाई मुख्यमंत्री के दफ्तर पर नहीं, बल्कि वहां तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी पर की गई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यमन की सऊदी अरब समर्थित सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच 7 दिनों का संघर्ष विराम लागू हो गया है। दोनों पक्षों के बीच स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित शांतिवार्ता भी शुरू हो रही है। शांतिवार्ता का उद्देश्य स्थायी संघर्ष विराम लागू करना, हथियारबंद समूहों को वापस बुलाना, युद्धबंदियों का आदान प्रदान करना और राहत एजेंसियों के लिए बेहतर पहुँच मुहैया कराना है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता अहमद फावजी ने संघर्ष विराम का ऐलान करते हुए कहा,
The Special Envoy of the Secretary General for Yemen, Ismailul Sheikh Ahmed, announces today the start.
यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इस्माइल शेख अहमद ने आज यमन में संघर्ष विराम का ऐलान किया है और इसे देश में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में अहम पहला कदम माना है। उन्होंने सभी पक्षों से इसका सम्मान करने और संघर्ष विराम को स्थायी रूप से समाप्त करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। जर्मनी की पुलिस ने देश के सबसे चर्चित इस्लामी प्रचारकों में से एक स्वेन लाओ को इस्लामिक स्टेट के समर्थन के संदेह में गिरफ्तार किया है। धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने लाओ वोपार्ट शहर में इस्लामी शरिया पुलिस गश्त शुरू करना जैसी कई विवादित पहल करने के लिए जाने जाते हैं। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि वे सीरियाई गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस से मतभेद कम करने की दिशा में वास्तविक प्रगति चाहते हैं। जॉन कैरी मास्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद वो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। कैरी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने पर सहमति बन गई है। ब्राजील में पुलिस ने ब्राजीली संसद के निचले सदन के अध्यक्ष एडवार्ड कुनिया के आधिकारिक निवास पर छापा मारा है। राजधानी रियो डी जेनेरियो स्थित उनकी संपत्तियों पर भी छापे मारे गए हैं। पुलिस सरकारी तेल कंपनी पेट्रोबास से जुड़ी कथित भ्रष्टाचार के मामलों में सबूत तलाश रही है। कुनिया ने स्वयं पर लगे सभी आरोप खारिज किए हैं। चीन के साम्यवादी नेता माओ जेडोंग का एक ब्रिटानी राजनेता को 1937 में लिखा एक ऐतिहासिक पत्र लंदन में $9 लाख से ज्यादा में बिका है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। आज सुबह कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय पर छापा मारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने उनके दफ्तर पर छापा मारा है, लेकिन सीबीआई के अनुसार ये छापा उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर मारा गया है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें कायर कहा, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री से माफी मांगे। अब ये एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा बन गया है। आज दिन भर की घटनाओं पर हमारे सहयोगी जुबैर अहमद की ये रिपोर्ट।
दिल्ली सरकार बनाम केंद्रीय सरकार, ये लड़ाई उस समय से चली आ रही है जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत हासिल की और सरकार बनाई। अब इस लड़ाई ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है। आज सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय पर छापा मारा। سی بی آئی کے انوسار اس کی کاروائی کے نشانے میں تھے مکھیہ منتری کے پرنسپل سیکرٹری راجندر کمار، لیکن عام آدمی پارٹی کا آروپ ہے کہ سی بی آئی کا اصل نشانہ تھے مکھیہ منتری اروند کیجریوال۔ پارٹی کے ایک پروکتا آسوتوش کے انوسار یہ کیندری سرکار کی تانہ شاہی ہے۔
جہاں تک میری جانکاری ہے آزادی کے اتہاس میں، آزادی کے بعد یہ پہلا ایسا واقعہ ہے جب آپ نے کسی مکھیہ منتری کے دفتر پہ جا کے اس طریقے سے چھاپہ مارا ہے۔ اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سی بی آئی کے پاس تو مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری اور بی جے پی کے نیتا شیوراج سنگھ چوہان کا بھی معاملہ ہے، جہاں 40 لوگوں کی مرتیو ہوئی ویاپم گھوٹالے میں۔ وسندھرا راجے سندھیا کے دفتر چھاپے کیوں نہیں مارے گئے؟ سشما سوراج کے دفتر چھاپے کیوں نہیں مارے گئے؟ اور اگر آپ کو کوئی جانکاری چاہیے بھی تھی تو اس جانکاری کے لیے آپ دلی کے مکھیہ منتری سے سمپرک کرتے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، اگر فائلیں نہیں دیتے، جانچ میں آنا کانی کرتے، اور تب اگر آپ کرتے تو بات آپ کی سمجھ میں آتی۔ یہ تو آئے تو بالکل لتانہ شاہی اور ڈکٹیٹرشپ ہے۔
سی بی آئی کہتی ہے کہ راجندر کمار کے خلاف 2007 سے 2014 تک کے بھرشٹاچار کے معاملے کے الزام کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ چھاپا اسی کی ایک کڑی ہے۔ ان کے خلاف ایک خاص کمپنی کو سرکاری فیور کرنے کا الزام ہے۔ سی بی آئی نے کہا ان کے گھر سے 2.5 لاکھ روپے نقد ملے ہیں۔ چھاپے کئی اور جگہوں پر بھی مارے گئے ہیں۔ راجندر کمار کے علاوہ 6 اور لوگوں کے ٹھکانوں پر بھی سی بی آئی نے کاروائی کی ہے، جیسا کہ سی بی آئی کی ایک پروکتا دیو پریت سنگھ کہتی ہیں۔
سی بی آئی نے راشٹریہ راجدھانی کھیتر دلی کے ایک ورشٹھ لوک سیوک و 6 انیا کے ورودھ معاملہ درج کیا۔ ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے ورش 2007 سے 2014 کے دوران دلی سرکار کے ٹھیکے ایک پرائیویٹ فرم کو آونٹت کرنے میں اپنی ادھیکارک ستھتی کا دروپیوگ کیا۔ سکشم عدالت سے وارنٹ ملنے پر آج دلی و اتر پردیش کے 14 ستھانوں پر تلاشی کی جا رہی ہے۔ مکھیہ منتری دلی کے کاریالے کی تلاشی کے سمبندھت رپورٹیں کمپلیٹلی آدھارہین ہیں۔
مکھیہ منتری کیجریوال اور ان کے سہیوگیوں کے انوسار مودی سرکار ان افسروں کو نشانہ بنا رہی ہے جو مکھیہ منتری کے قریبی مانے جاتے ہیں۔ آج کے چھاپے کے بعد مکھیہ منتری اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے پردھان منتری نریندر مودی کو کائر اور منوروگی کہہ ڈالا۔ اس پر کیندریہ منتری روی شنکر پرساد نے کہا کیجریوال جی کو پردھان منتری سے فوراً معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے کہا عام آدمی پارٹی کی سرکار دوہری پالیسی رکھتی ہے۔
ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار میں خبر چھپی ہے کہ دلی سرکار کے ایک افسر ہیں سنجے پرتاپ سنگھ، جن کے اوپر گھوس لینے کا آروپ ہے۔ سی بی آئی نے کاروائی کی، ان کو گرفتار کیا، ان کے یہاں سمپتی ملی ہے، وہ بھی اخبار میں چھپتے ہیں۔ تو سی بی آئی کے اس کاروائی پر آپ سرکار نے کیا کہا کہ یہ ہمارے کارن ہو رہا ہے؟ سی بی آئی کی کاروائی کو انہوں نے اون اپ کیا اور کہا ہمارے کارن ہو رہا ہے۔ اور آج جب ان کے سیکرٹری کے خلاف آروپ لگ رہے ہیں تو سی بی آئی کے خلاف انرگل آروپ لگائے جا رہے ہیں۔ تو جب ان کے ایک آفیسر جو دلی سرکار میں ہیں ان کے خلاف سی بی آئی کاروائی کرتی ہے تو سی بی آئی کی جے جے کرتے ہیں، اور جب ان کے سیکرٹری کے خلاف سی بی آئی کاروائی کرتی ہے تو سی بی آئی کی ہائے ہائے کرتے ہیں۔ یہ پورے دوہرے مانڈنڈ ہیں۔
شری پرساد نے یہ بھی سپشٹ کیا کہ سی بی آئی نے چھاپے عدالت سے وارنٹ حاصل کرنے کے بعد مارے ہیں، اور یہ کہ کیندر سرکار کے کہنے پر سی بی آئی نہیں چلتی۔ مکھیہ منتری اروند کیجریوال نے کئی بار مودی سرکار کے خلاف ان کی سرکار کو نہ چلنے دینے کا آروپ لگایا ہے۔ انہوں نے پہلے اپنی سرکار پر انکش لگانے کے لیے مودی سرکار کے خلاف اپ راجپال نجیب جنگ کا استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے، اور پھر دلی پولیس کو ان کی سرکار کے انترگت نہ دیے جانے پر ناراضگی جتائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سی بی آئی کے چھاپے پر کیجریوال سرکار نے جلد بازی میں پرتکریا دی؟ کیا مودی سرکار نے جوابی حملے میں ضرورت سے زیادہ آکرمک رخ اپنایا؟ اور کیا سی بی آئی اتنی ہی سوتنتر ہے جتنی سرکار اسے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے؟ زبیر احمد، بی بی سی دلی۔
جہاں ایک طرف عام آدمی پارٹی اور بی جے پی ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف اس گھٹنا کے بعد راجنیتی گرما گئی ہے اور کئی دلوں نے اس کی کڑی نندا کی ہے۔ کس طرح کی راجنیتک پرتکریا آ رہی ہے بتا رہے ہیں امر شرما۔
دلی سچیوالے میں سی بی آئی چھاپے کے بعد دلی کی راجنیتی میں مچے ہنگامے کی گونج سنسد تک پہنچ گئی۔ راجیہ سبھا میں ترنمول کانگریس کے سانسد ڈیرک اوبرائن نے کہا آج سویرے دلی سچیوالے میں سی بی آئی نے چھاپا مارا۔ میں یہ ادھیکارک طور پر کہہ رہا ہوں کہ سی بی آئی کے ادھیکاریوں نے مکھیہ منتری دفتر میں پڑی فائلوں کی پڑتال کی ہے۔ ڈیرک اوبرائن کے شبد۔ جے ڈی یو کے پروکتا اور سانسد کے سی تیاگی ان چھاپوں کو بدلے کی کاروائی بتاتے ہیں۔
یہ राजनीति से प्रेरित है, ये विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश है, ये आपातकाल जैसी कार्रवाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप किसी पर नहीं लगे। वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे के अकाउंट में 11 करोड़ रुपए आ जाते हैं मोदी के, उसके बावजूद भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि श्री केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने में लगे रहते हैं, इसलिए कि बदले की ये कार्रवाई की गई है।
कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद इन छापों पर हैरानी जता रहे हैं और न्यायिक जांच की सलाह देते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
लोगों को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन निश्चित रूप से अगर कहीं भ्रष्टाचार का कोई मामला उजागर होता है तो सीबीआई की जिम्मेदारी है, लेकिन सीबीआई का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं होना चाहिए और मोदी सरकार ने पहले इस तरह का गलत काम किया है, इसलिए आम लोगों को शक होता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा से कहीं नहीं किया हो। इसी को दूर करने के लिए और उन पर करप्शन के इल्जाम लगे हैं केजरीवाल साहब की सरकार पे, तो दोनों की भलाई इसी में है कि एक सिटिंग जज हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट की देखरेख का डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद शाम में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात की और कहा,
सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है, और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये, इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे? अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? आपकी सरकार आ गए तो बहुत दिन हो गए। अब 2015 तक आपने, मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं।
विपक्षी पार्टियों की तीखी प्रतिक्रिया से साफ है कि वे सीबीआई के छापों को केंद्र के राज्य सरकारों को सबक सिखाने के तौर पर देख रही हैं।
सीबीआई छापे को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार में तू तू मैं शुरू। ये थी अमर शर्मा की रिपोर्ट।
देश दुनिया की खबरें 2400 घंटे bbchindi.com के साथ।
दिल्ली में प्रदूषण पर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे मिलकर प्रदूषण कम करने के लिए काम क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई के दौरान ये तय करेगा कि दिल्ली समेत देश के 13 बड़े शहरों में डीजल गाड़ियों पर रोक लगाई जाए या नहीं। पूरी रिपोर्ट के साथ प्रगति सक्सेना।
सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदूषण पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदूषण पर एक बार फिर चिंता जताते हुए ये संकेत दिए हैं कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्स की रकम 700 से बढ़ाकर 1300 रुपए की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की इस इच्छा पर कि केंद्र और दिल्ली सरकार को इस क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहिए, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सहमति जताई। एक समाचार चैनल से उन्होंने कहा कि दिल्ली को अपने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से मिलकर प्रदूषण कम करने की कोशिश करनी होगी।
ये बिल्कुल उच्चतम न्यायालय ने सही कहा है और हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की हवा बिगड़ती है तो आसपास के इलाकों का भी उसमें हिस्सा होता है, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार सबको इकट्ठा करके हम पिछले एक साल से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट का मैं स्वागत करता हूं और उसी दिशा में हम प्रयासरत हैं।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील और अदालत के एमिकस क्यूरी हरीश सालवे ने बताया कि सन 2000 से अब तक दिल्ली में वाहनों की संख्या 97% बढ़ी है। राजधानी में 86 लाख से ज्यादा कारें हैं, जो न्यूयॉर्क या लॉस एंजल्स जैसे बड़े शहरों से कहीं ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल और केरोसिन की मिलावट पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि पेट्रोल पंपों के मामले में भी एक स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए। कार डीलरों को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस T.S. ठाकुर ने कहा कि लोगों की जान पर बनी है और आपको कार बेचने की पड़ी है। प्रदूषण रोकने के दिल्ली सरकार के सम विषम नंबर की गाड़ियों वाले फॉर्मूले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत राज्य सरकार को रोक नहीं रही, लेकिन सवाल ये है कि इसे कैसे लागू किया जाए। इसके अलावा अदालत 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने और वर्ष 2005 से पहले रजिस्टर्ड गाड़ियों के दिल्ली एनसीआर में प्रवेश पर बैन लगाने के पक्ष में भी दिखी। पिछले हफ्ते नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी डीजल वाहनों पर रोक का निर्देश जारी किया था। उम्मीद है कि प्रदूषण रोकने के लिए प्रस्तावित इन सभी सुझावों पर सुप्रीम कोर्ट कल एक स्पष्ट आदेश जारी करेगा। तब ये तस्वीर और साफ होगी कि अपने ही बनाए प्रदूषण के इस राक्षस से हम किस तरह निपटेंगे।
प्रदूषण की समस्या से सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित, ये थी प्रगति सक्सेना की रिपोर्ट। कल हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी गुट के कई वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात की। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस मुलाकात में बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों और कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
पाकिस्तानी उच्चायुक्त से हुर्रियत के दो वरिष्ठ नेता पीर सैफुल्ला और अल्ताफ अहमद शाह ने डेढ़ घंटे तक बैठक की, जिस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर जोर देकर बताया कि वो कश्मीर पर अपनी पॉलिसी को बरकरार रखें। पार्टी के प्रवक्ता अयाज अकबर ने इस हवाले से बीबीसी को बताया।
हिंदुस्तानी वजीर खारजा और पाकिस्तानी हुक्मरानों की जो बातचीत हुई उसी सिलसिले की एक कड़ी समझ दीजिए, कॉन्फ्रेंस जानना चाहती थी कि उसमें पाकिस्तान ने किस तरह का स्टैंड दिया है और पाकिस्तान की तरफ से उसका क्या जवाब आया है। इसीलिए गिलानी साहब ने एक वक्त भेजा कि उन्होंने हाई कमीशन में बात की और उनसे तफसीलात उन्होंने बताई। ये जो मसले कश्मीर है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई सरहदी तनाजा नहीं है, इस बात को दुनिया में समझा जा रहा है। जब तक उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, उनकी नहीं सुनी जाती, इस मसले का हल न माजी में निकला है और न मुस्तकबिल में निकलने की कोई उम्मीद है।
हुर्रियत नेताओं की पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात को लेकर जम्मू कश्मीर राज्य की हुक्मरान जमात पीडीपी का मानना है कि बातचीत के लिए जरूरी है कि हर एक का विश्वास हासिल किया जाना चाहिए और कश्मीर समस्या का जो भी फरीक है उसको बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। पीडीपी के वरिष्ठ नेता रफी अहमद मीर कहते हैं,
बातचीत असल में शुरू हुई कुछ रुकावटों के बाद का हम खैरमकदम करते हैं। रहा सवाल कि गिलानी साहब के जो लोग उनके नुमाइंदे हाई कमीशन में चले गए कल, वो कोई नई बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या इस स्टेज पे उनको जाना चाहिए या उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। बहस हो सकती है उस बात पे, लेकिन उनका मौकफ जो रहा है उसमें हमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जब बातचीत का सिलसिला आगे हो जितने भी स्टेक होल्डर्स हो उनमें हुर्रियत वाले भी शामिल हो सकते हैं, तो उसमें हम कोई मुखालफत नहीं करते हैं। इनके मिलने का जहां तक ताल्लुक है उसकी भी नहीं मुखालफत।
तहम जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सहयोगी जमात बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि बातचीत कश्मीर के किसी भी विवाद पर नहीं होगी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और वरिष्ठ नेता अशोक कौल कहते हैं,
हमने तो ये कह दिया है कि बायलैटरल टॉक्स, उसमें कोई तीसरा चौथा आदमी या किसी और जगह या किसी और ऐसा हम भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। वो अपना एजेंडा चला रहे हैं, उनको अधिकार है अपना चलाने का, क्या कर सकते हैं।
कश्मीर के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जिस तरह से कश्मीर के अलगाववादियों ने भारत और पाकिस्तान की बातचीत को लेकर भारत से नाराजगी जताई, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनको नाराजगी जतानी ही थी तो पाकिस्तान से जताते। इन विश्लेषकों का ये भी मानना है कि फिर पाकिस्तान ने कश्मीर के अलगाववादियों को विश्वास में लिए बगैर बातचीत शुरू ही की उनकी। कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक ताहिर मुहिद्दीन कहते हैं,
बड़ी मुश्किल से शुरू हुई और इंटरनेशनल लेवल पे इनका बड़ा खैर मकदम किया गया, लेकिन कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट कैंप है उसके कुछ सर्कल ने इस पर नाराजगी का इजहार किया। मैं समझता हूँ कि नाराजगी का ये इजहार ये पूरी तरह जस्टिफाइड नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इनका कश्मीर की जो सेपरेटिस्ट है अगर उनको शिकवा करना भी था तो इनको पाकिस्तान से शिकवा करना चाहिए था कि पाकिस्तान ने हुर्रियत के बगैर भारत के साथ बात करना क्यों कबूल किया। तो मुझे लगता है इनको वहां से पाकिस्तान को अंदाजा था कि कश्मीरी जो हुर्रियत पसंद कायदियन हैं कुछ वो नाराज हैं, उनका मूड ठीक करने के लिए मुझे लगता है उनको वहां बुलाया गया होगा।
विश्लेषकों का ये भी ख्याल है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को अपनी हठधर्मी के मिजाज को बदलना होगा, जिसके लिए अब वो तैयार नजर आ रही है। भारत और पाकिस्तान ने बातचीत का आगाज एक बार फिर तो कर दिया, लेकिन क्या आज की बातचीत भी माजी की उसी कड़ी का एक हिस्सा होगा जो हम बार बार देख चुके हैं। माजिद जहांगीर, बीबीसी हिंदी, श्रीनगर।
वैसे तो पंजाब में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य में प्रदेश कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल ने आज विशाल रैलियां करके जैसे चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। कांग्रेस प्रदेश इकाई के प्रमुख बनने के बाद अमरिंदर सिंह ने पहली रैली की और उनमें वायदों की बौछार की, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल ने उन पर हमला बोला। एक रिपोर्ट के साथ पंजाब से रविंदर सिंह रॉबिन।
पंजाब कांग्रेस जिंदाबाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद।
कांग्रेस ने अपनी रैली का नाम बदलाव रैली रखा और अकाली दल भाजपा गठबंधन ने इसे सद्भावना रैली का नाम दिया। एक लंबे समय के बाद कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता बठिंडा में हुई रैली में एक मंच पर नजर आए। बठिंडा में कांग्रेस को रैली करने की चुनौती अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दी थी, जिसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वीकार किया। राज्य में 2017 में चुनाव होंगे और कांग्रेस आने वाले इस एक वर्ष को एक संघर्ष के रूप में देख रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली भाजपा सरकार को राज्य से उखाड़ फेंकने के वादे किए और कस्में खाई कि वे लोगों की परेशानियों को दूर करेंगे। कैप्टन का कहना था,
मैं ये दमदमा साहब वाल गुटका साहब नु चक के सौ खाने आज के पहली गल, ये जो नशिया का कम है, जो आम आदमी कहने चार महीने आज मैं खत्म कर दूं, मैं ये चार हफ्तों के लक तोड़ के छूंगा। जो भ्रष्टाचार है इस देश दे विच, बच्चा कोई पटवार खाना थाना कोई तहसील दे विच नहीं जा सकता, वो भ्रष्टाचार मैं खत्म करके छूं, ये मेरा वर।
वहीं अकाली दल के प्रधान और पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल ने सद्भावना रैली में कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना लगाया। उनका कहना था,
कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पंजाब वापस वो हालात बनाए जान जेड़े 35 साल पहले ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਰੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਾਵ ਸੇ ਇਤਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਗਲ ਬਜਾਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ್ਞ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਥਾ,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਕੀਆ ਥਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ, ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇਂ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਮੇਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਮੇਂ ਵੀ ਦਮ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਐਸੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਥੇ ਤੋ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਥਾ, ਤੋ ਐਸੇ ਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੋਏ आज रैली की है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि हमारी जो बठिंडा रैली होगी बेसिकली ये हमारे जो पंजाब के विधानसभा चुनाव है उसका आगाज होगा। जो आज की रैली हुई है उसमें जो जज किया गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तरह से चुनाव मैनिफेस्टो का पार्ट ही सुना दिया।
इन दो दलों के अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रही है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पहले ही पंजाब में होने वाले चुनाव में अपनी पार्टी की बागडोर संभालने का ऐलान कर चुके हैं। 2017 में अकाली दल को 10 वर्ष हो जाएंगे राज करते हुए, और अकाली दल को कौन पटकनी दे, पंजाब राज सत्ता में आएगा या फिर अकाली भाजपा ही तीसरी बार राज्य सत्ता पर अपना कब्जा जमाए रखेगी, अब यह तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। पंजाब से बीबीसी हिंदी के लिए रविंदर सिंह रॉबिन।
की हम क्या कर रहे हैं, क्राइम के लिए कोई उम्र नहीं और सजा के लिए उम्र देखते हैं, तो मुझे अब निराशा हो रही है अपने कानून व्यवस्था से।
16 दिसंबर 2012 को एक पैरा मेडिकल छात्रा के साथ हुए बलात्कार ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। इन 3 सालों में क्या कुछ बदला है इस परिवार के लिए, सुनेंगे खास साक्षात्कार पीड़िता की मां आशा देवी से घटना चक्र में। विषय परिवर्तन करते हैं और आपको मिलवाते हैं नेपाल के मशहूर कॉमेडियन मनोज गजुरेल से। गजुरेल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज के कायल हैं और वो उनकी मिमिक्री करते रहे हैं, लेकिन जब से भारत और नेपाल के संबंधों में तनाव आया है गजुरेल की प्रस्तुति का अंदाज बदल गया है। बीबीसी के लिए अनिल यादव ने उनसे बात की और सबसे पहले पूछा कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पहली प्रस्तुति कब दी थी।
ये मोदी का पहला आपने कब किया? जब मोदी जी नेपाल आए थे और नेपाल के पार्लियामेंट में संबोधन करे थे तो मैं मोदी जी के बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि उनका जो मैं बाहर से देख रहा था उनका व्यक्तित्व जो है, उनका आवाज़ में दम जो है, उनका शब्द चयन जो है, इसमें कितना ज़्यादा दम है, तो मैं पढ़ रहा था उनको। तो लकीली वो नेपाल आए तो नेपालियों का मन भी जीत लिए। तो मैंने सोचा भाई ये तो पॉजिटिव चीज़ है, हंसे बेंगे का मतलब सिर्फ गाली नहीं है, अच्छी बात को तो प्रोत्साहन भी करना चाहिए। तो उनका कैरेक्टर बना के मैंने नेपाल में पार्लियामेंट का उनका संबोधन के 3 दिन में मैंने रिहर्सल किया। मेरा शो था 22 को, 18 में वो आ गए, 3 दिन में उनका गेटअप खरीदा, दाढ़ी बहुत ज़्यादा लगाया। पहले दिन में मोदी जी अच्छे नहीं देखे, तो मीडिया में कमेंट आया नेपाली में, मोदी का शो तो ठीक है, आवाज़ ठीक है, लेकिन उनका गेटअप ठीक नहीं। तो मैं रात भर जागा और दिन भर ये हमारे बाजार में गया, फोटो देखा, तो उसके बाद मोदी जी बन गया। तो मैंने नेपालियों को संदेश भी दिया था उस पहली मोदी जी का भाषण में, मित्रों जब मैं काठमांडू में उतरा मैंने सुना था नेपाल कृषि प्रधान देश है।
तो एज ए कम्युनिकेटर, एज ए प्रेजेंटर, एज ए आदमी मोदी के बारे में आपकी क्या राय?
पर्सनली आवाज इज फैन, उनका आवाज़ जो है, उनका शब्द चयन जो है, भाई आज भी मैंने मेरा फेसबुक स्टेटस में आज भी लिखा है कि भारत की संसद में जो नेपाल संवाद हुआ, कोई सपोर्ट में आया, नेपाल के पक्ष में बोले, कोई विरोध में बोले, ये बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र को पहले सोचना चाहिए, वो कर रहे हैं, उसको करना ही चाहिए। पहले अपना राष्ट्र होता है, राष्ट्र का अपना सुरक्षा होता है। नेपाली में एक कहावत, अपना थैली पहले बांधो, दूसरों को आरोप मत लगा। तो पर्सनली मोदी जी का जो व्यक्तित्व है उसका तो मत फैन है।
क्या खास बात?
हमारे नेपाल में एक थे मदन भंडारी, जो इतना अच्छी तरह कम्युनिकेट करते थे कि मैं कंपेयर करता हूँ, अपनी बात कन्विंस करा सकते हैं। लेकिन मैं ये व्यंग्य जो है कि मोदी जी पर्सनली नहीं है, संस्था के ऊपर है, मतलब इश्यू के बेस हैं।
मदन भंडारी से कंपेयर करते हैं तो कैसा पाते हैं आप मोदी?
व्यक्तित्व में तो कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि वो देश बड़ा है, वो अगर फर्क होता है
ना, मतलब जो
कम्युनिकेशन का,
कम्युनिकेशन की
वो कन्विंस पावर है। नेता जो है मस्तिष्क से चलता है, हृदय से नहीं चलता है। मस्तिष्क में लोभ, घमंड, किसी को धमकाना, फकाना, रोना धोना, पैर पकड़ना, मार देना,
सारा नाटक।
लेकिन मदन भंडारी जननेता है।
तो आपने जो मोदी का किया तो कोई एतराज नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा?
मुझे लगता है नेपाली, भारतीय और विश्व के जनता हास्य व्यंग्य को, उसमें भी हिंदुस्तानी जनता हास्य व्यंग्य को सम्मान करते, प्यार करते,
बहुत करते।
ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये गाली नहीं है, ये व्यंग्य है। मोदी जी के बाद जो मिमिक्री किया मैंने, दूसरी मिमिक्री, थोड़ा रिस्पॉन्स बढ़ गया कि जिम्मेवार भी होना है। मैं एक इंटरनेशनल रिलेशन का भी ध्यान देना पड़ता है। तो अगर मैंने मोदी का मिमिक्री किया वहाँ तो मेरे पुतला चलना चाहिए थे, लेकिन वो नहीं होता। सहनशीलता अभी है।
आप कहाँ कहाँ शो कर चुके हैं?
मैं एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया करके 30-35 देश में शो कर चुके, और नेपाल में भी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत किया है मैंने, और दिल्ली में किया है, शो किया है।
कितने सालों से कर रहे हैं आप ये?
मैं 2000 से एक्टिव हूँ।
तो इससे कुछ आपको आमदनी भी होती
है? इससे तो मैंने पहले भी कहा, तो जीविकोपार्जन होता है।
आपको कितने पैसे मिलते हैं शो?
मैं पहले भी कहा कि मैं कॉमेडियन एक्टिविस्ट हूँ, तो ये मेरी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में टैग नहीं होता है, इसीलिए मैं कॉमेडियन एक्टिविस्ट कह रहा हूँ।
नेपाल के मशहूर कॉमेडियन मनोज गजरेल से बात कर रहे थे अनिल यादव। और अब बात आईपीएल की। आईपीएल में जो है महेंद्र सिंह धोनी अगले सत्र में पुणे के लिए और सुरेश रैना राजकोट के लिए खेलेंगे, और पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव स्टूडियो में आदेश। आदेश, क्या जानकारी है?
जी देखिए, आज 10 खिलाड़ियों को कुल मिलाकर राजकोट और पुणे ने अपने साथ जोड़ा। ड्राफ्ट के बाद पुणे ने आज अपने साथ भारत की एक दिवसीय और 2020 टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, आर अश्विन, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और दक्षिण अफ्रीका के फैफ डु प्लेसिस को अपने साथ जोड़ा। वहीं राजकोट ने सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम, ऑस्ट्रेलिया के जेम्स फॉकनर और वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो को अपनी टीम में शामिल किया। काफ़ी पैसा खर्च हुआ इस पर। अब देखना ये होगा कि फरवरी में जब बाकी खिलाड़ियों की नीलामी होगी तो किस तरह से खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है। लेकिन आज थोड़ा सा ताज्जुब ये हुआ कि जब राजकोट को पहला खिलाड़ी चुनने का मौका मिला तो उन्होंने सुरेश रैना को चुना। शायद सुरेश रैना मैच विनर खिलाड़ी हैं और आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में भी शामिल हैं। इससे पहले हमें लग रहा था कि शायद वो अपने लोकल हीरो रविंद्र जडेजा को चुने, और इस मामले में बाजी मारी सुरेश रैना ने और उनका पर्स भी थोड़ा भारी हुआ, क्योंकि पहले खिलाड़ी को 12.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो अब देखना है कि किस तरह से बाकी खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद खेल की जानकारी के लिए। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई के छापों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर और मनोरोगी कहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यमन की सऊदी अरब समर्थित सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच 7 दिनों का संघर्ष विराम लागू हो गया है। जर्मनी की पुलिस ने देश के सबसे चर्चित इस्लामिक प्रचारकों में से एक स्वेन लाउ को इस्लामिक स्टेट के समर्थन के संदेह में गिरफ्तार किया है। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि वे सीरियाई गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस से मतभेद कम करने की दिशा में वास्तविक प्रगति चाहते हैं और ब्राजील की पुलिस ने ब्राजीली संसद के निचले सदन के अध्यक्ष एडवार्डो कुनिया के आधिकारिक निवास पर छापे मारे हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।